निक प्रियल को लेकर अपने नए घर पहुंचा, जहां सोनू मामी और जेनिफर ने मिलकर उनके वेलकम की अच्छी तैयारी कर रखी थी। निक प्रियल को लेकर अंदर प्रवेश करने लगा तो प्रियल ने उसका हाथ पकड़कर उसे आगे जाने से रोक लिया। प्रियल बोली, अरे अभी अंदर मत जाइए। क्यों, क्या हुआ? निक ने हैरानी से पूछा। प्रियल ने कहा, पहले हमारी आरती उतारेंगे, फिर कुछ रस्में निभाएंगे, उसके बाद ही अंदर आने दिया जाएगा। तुम्हें तो सब पता है, पंडित जी की जगह तुम ही क्यों नहीं बैठ गई शादी करवाने के लिए? क्योंकि मुझे सारे मंत्र नहीं आते ना, वरना तो मैं ही बैठ जाती, प्रियल ने हंसकर जवाब दिया। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि सोनू मामी और जेनिफर पूजा की थाली लेकर आईं। उनके साथ अलीजा और अलीशा भी थीं। निक के सभी दोस्त भी वहीं मौजूद थे। जेनिफर ने निक और प्रियल की आरती उतारी। सोनू मामी ने नीचे चावल का कलश रखते हुए कहा, प्रियल अब दाएं पैर से इस कलश को गिराकर इस आंगन की। प्रियल उनकी बात पूरी होने से पहले ही बीच में बोल पड़ी, हाँ हाँ मामी, मुझे सब पता है, मैंने मूवीज में देखा है और सीरियल्स में भी। निक ने कहा, इतने दिन जितना देखना था देख लिया, अब बिल्कुल भी नहीं देखने दूंगा तुम्हें ये सब बकवास चीजें। आप कौन सा एनी टाइम मेरे पास रहते हो, आपको कौन सा पता चलता है कि मैं क्या देखती हूँ और क्या नहीं, प्रियल ने जवाब दिया। चलो अब बहस करना बंद करो और रस्में निभाओ, सोनू मामी ने कहा। प्रियल ने हामी भरी और उस कलश को गिराकर आंगन में अपने पैरों के निशान बनाकर निक के साथ अंदर आई। अब लग रहा है कि मुझे भी इंडियन स्टाइल वेडिंग ही करनी चाहिए थी, जेनी इन सबसे बहुत ज्यादा एक्साइट हो गई थी। रॉन ने हंसकर कहा, हम भी प्रियल और निक की तरह वापस शादी कर लेते हैं, आई विश कर पाते, जेनी ने जवाब दिया। सोनू मामी ने उन सबको आवाज लगाते हुए कहा, आ जाओ बच्चों, रंग ढूंढने का गेम खेलते हैं, इसमें जो जीतेगा पूरी लाइफ उसी की मनमानी चलनी है। प्रियल ने निक की तरफ देखकर कहा, तब तो मैं ही जीतूंगी। इन योर ड्रीम्स, कभी जीती हो तो मुझसे, जो अब जीत पाओगी, निक ने आंख घुमाकर जवाब दिया। प्रियल मैं तेरी साइड हूँ, जेनी उसके पास आकर बैठ गई। ऐसे करके आधे लोग निक की साइड हो गए तो आधे प्रियल की तरफ। उसके बाद निक और प्रियल अंगूठी ढूंढने की रस्म करने लगे, जिसमें निक जीत गया। निक ने खुश होकर कहा, मैंने कहा था ना तुम मुझसे नहीं जीत पाओगी, अब तो पूरी लाइफ तुम्हें मेरी ही सुननी पड़ेगी। प्रियल एक बार और करते हैं ना प्लीज, सोनू मामी ने हंसकर कहा। प्रियल निक ऑलरेडी 3 बार जीत चुका है तुमसे, अगर तुम एक बार और हारना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलते हुए निक ने रंग वापस सामने पड़े बड़े से बाउल में डाल दिए जो कि दूध से भरा हुआ था। प्रियल और निक वापस रंग ढूंढने लगे। काफी देर ढूंढने के बाद निक एक बार फिर जीत गया। निक ने मुस्कुराते हुए कहा, अब बोलो मानोगी ना मेरी सारी बात? प्रियल ने मुंह बनाकर कहा, ये कोई रियलिटी नहीं होती, ये बस एक गेम है। अच्छा गेम है, तो बार बार जीतने की जिद क्यों कर रही थी? निक ने जवाब दिया। वैसे तो हमने ज्यादा गेस्ट को इनवाइट नहीं किया है, लेकिन प्रियल फिर भी तुम रेडी हो जाओ, मुंह दिखाई की रस्म भी तो करनी है ना, रिसेप्शन पार्टी तो US में होगी, जेनिफर ने कहा। पर सारे घर वाले ही तो हैं, फिर क्या करेंगे मुझे देखकर, पहले मिल तो चुके हैं सब, प्रियल ने पूछा। हाँ सारे मिल चुके हैं, लेकिन पता है तुम्हें गिफ्ट मिलेंगे मुंह दिखाई पर, अंकित ने कहा। प्रियल ने हामी भरी और कमरे में तैयार होने चली गई। सब लोग मुंह दिखाई की रस्म की तैयारी कर रहे थे। प्रियल रेडी होकर लंबा सा घूंघट डालकर अपना ड्रेस संभालते हुए नीचे की तरफ आ रही थी। निक ने उसे नीचे आता देखा तो वो दौड़कर उसके पास गया। ये क्या कर रही हो तुम, क्या जरूरी है इतना लंबा घूंघट डालने की, तुम कुछ दिख भी रही हो या नहीं? निक ने उसे संभालते हुए पूछा। नहीं दिख रहा है, साइड हो जाइए आप मेरे आगे से, वरना सच में गिर जाऊंगी। रुको तो सही, सबसे पहले मैं ही देखूंगा तुम्हें। जैसे ही निक उसका घूंघट हटाने को हुआ, नीचे से जेनिफर ने आवाज लगाई, निक क्यों परेशान करते रहते हो सारे दिन? देख लूं? निक ने पूछा। जेनिफर ने आंखें दिखाते हुए नामे सिर हिलाया तो निक ने फिर से उसके सिर पर घूंघट पहना दिया। वो उसे नीचे की तरफ ला रहा था कि तभी प्रियंका जी अपने परिवार सहित वहां पहुंच गईं। प्रियंका जी ने निक से कहा, अगर तुमने मेरी प्रियल को परेशान किया है तो मैं वापस ले जाऊंगी उसे। निक ने कहा, अभी ऑप्शन नहीं है आपके पास प्रियंका जी, अब इसे प्यार करूं या परेशान, रहेगी तो मेरे पास ही, लेकिन सिर्फ प्यार ही करना, परेशान नहीं, प्रियंका जी ने मुस्कुराकर कहा। निक प्रियल को लेकर मुंह दिखाई की रस्म के लिए नीचे आ गया था। प्रियल सबके बीच में बैठी थी तो वहीं उसके पास में निक भी वहीं था। नानी ने कहा, अच्छा जैन अब तुम्हारी बारी है, प्रियल की गोद में बैठ जाओ, जो चाहिए मांग लो अपनी भाभी से, तब तक मत उठना जब तक मनपसंद का गिफ्ट ना मिले। अच्छा ऐसी भी कोई रस्म है क्या, मुझे तो पता ही नहीं था, जैन हैरानी से प्रियल की गोद पर हल्का सा बैठा और कहा, भाभी आप कंफर्टेबल तो है ना? प्रियल ने जवाब दिया, तुम मुझे भाभी क्यों बोल रहे हो, इससे कंफर्टेबल हूँ मैं। फिर उसने धीरे से जैन के कान में कहा, बोलो क्या चाहिए? एक स्पोर्ट्स कार, जैन ने धीरे से जवाब दिया। तो उठना मत जब तक तुम्हारी बात निक मान ना ले। ओके डन। वे दोनों आपस में ही धीरे धीरे बातें किए जा रहे थे। प्रियंका जी ने कहा, दोनों देवर भाभी आपस में ही सारी बातें कर लोगे क्या? बोलो जैन क्या चाहिए? अच्छा गिफ्ट मिलेगा तो एक साइड गोद में मैं बैठ जाता हूँ, फिर मुझे भी गिफ्ट देना पड़ेगा, ऐसे तो ये मुझे कुछ देने वाली नहीं है, निक ने प्रियल को परेशान करने के लिए कहा। ये देवर का हक होता है, तुम दोनों पति पत्नी भी बड़े अजीब हो, दुल्हन शादी में साली की जगह अपने पति के जूते छुपाकर पैसे ले रही है और दुल्हा गोद में देवर की जगह बैठकर अपनी पत्नी से पैसे ले रहा है, प्रियंका जी ने कहा। जल्दी बताओ जैन क्या चाहिए, वरना आज तो मेरा पैर टूट जाएगा, प्रियल ने दर्द होने का दिखावा किया। निक ने तुरंत कहा, हाँ जैन जल्दी बोलो ना, गुड़िया को दर्द हो रहा होगा।
ज्यादा कुछ नहीं भाभी, भाई को बोलो कि मुझे एक अच्छी सी स्पोर्ट्स कार दिला दे। जैन ने अपनी डिमांड सबके सामने बता दी थी। निक ने कहा, जैन तुम मेरी गोद में नहीं बैठे हो जो मैं तुम्हें कार दिलाऊं, जिसकी गोद में बैठे हो उसी से मांगो। पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो फिर मैं खड़ा नहीं होऊंगा, जैन ने कहा। प्रियल ने निक की तरफ देखकर कहा, आप दिला दो ना इसे कार, वरना मेरा पैर तोड़ देगा ये। निक ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अच्छा ठीक है, दिला दूंगा, अब तो उठ जाओ। निक के हाँ कहते ही जैन प्रियल की गोद से उठ गया। सबने बारी बारी से प्रियल को मुंह दिखाई का गिफ्ट दिया और इसी के साथ ये रस्म यहीं पर खत्म हो गई। ज्यादातर मेहमान वहां से जा चुके थे। निक ने अलीजा और अलीशा को भी वापस लंदन भेज दिया था, तो वहीं आयशा और आरोही भी अपने अपने घर जा चुकी थी। रात तक वो लोग सारी रस्में निपटा चुके थे। प्रियल प्रियंका जी और नानी के पास बैठी थी, तो निक अपनी कुछ मीटिंग्स हैंडल कर रहा था। अर्जुन, प्रांजल और जैन मिलकर निक और प्रियल के रूम डेकोरेट कर रहे थे। डेकोरेशन कम्प्लीट होने के बाद अचानक प्रांजल ने कहा, क्यों ना कुछ डिफरेंट करें, लाइट, ये शादी की आखिरी रस्म है, इसके बाद कुछ करने का मौका पता नहीं कब मिलने वाला है। जैन ने पूछा, मतलब? प्रांजल ने जवाब दिया, मतलब दीदी की जगह किसी और को बिठा देते हैं। हाँ, जैसे प्रियल बैठ नहीं देगी अपनी जगह किसी और को, अर्जुन ने कहा। लेकिन दीदी तो नीचे सबके साथ बैठी है ना, उन्हें पता भी नहीं चलेगा, प्रांजल ने कहा। पर बैठेगा कौन, जैन ने पूछा। प्रांजल, आयशा या आरोही होती तो उनमें से किसी एक को बिठा देते, आपकी और अर्जुन की हाइट दीदी से नहीं मिलती, और मैं बैठी तो जीजू एक मिनट में पहचान जाएंगे।
प्रांजल ने प्लान तो बना लिया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस रूम में प्रियल की जगह किसे बिठाए। ज्यादातर सब लोग जा चुके थे और घर वालों के अलावा वहां और लोग मौजूद नहीं थे। वे सब लोग सोच ही रहे थे, तभी आयुषा वहां पर आई। आयुषा ने आते ही पूछा, हो गया रूम डेकोरेट? वे तीनों आयुषा की तरफ देखने लगे। उन्होंने देखा कि प्रियल और आयुषा की हाइट और हेल्थ काफी हद तक एक दूसरे से मैच कर रही थी। मुझे क्यों घूर घूर कर देखा जा रहा है, आयुषा ने आंखें तरीर कर पूछा। क्योंकि तुम दुल्हन बनोगी और प्रियल की जगह बैठोगी, अर्जुन ने कहा। मैं नहीं बैठने वाली। और हम आपकी क्यों सुने, प्लीज दीदी मत करना, जैन ने रिक्वेस्ट की। आयुषा के मना करने के बावजूद उन्होंने मिलकर जबरदस्ती आयुषा को दुल्हन की तरह रेडी करके प्रियल की जगह वहां पर बिठा दिया। दीदी बस रेडी रहना, मैं जीजू के पास लेकर आती हूँ, प्रांजल ने आयुषा का घूंघट डालते हुए कहा। प्रांजल और जैन मिलकर निक को लाने गए, तो वहीं अर्जुन बाकियों को बुलाने चला गया ताकि वो उन्हें लेकर कमरे के आगे खड़े हो जाएं। प्रांजल और जैन निक के पास गए तो वो अपने काम में लगा था। प्रांजल ने उसके पास जाकर कहा, चलिए जीजू, कम से कम आज के दिन तो खुद को फ्री रखिए। मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में आना, और वैसे भी शादी की सारी रस्म तो निपट गई है ना, निक ने बिना उनकी तरफ देखे जवाब दिया। उसकी नजरें अभी भी लैपटॉप में घड़ी थीं। भाई, आज भी काम? ऊपर रूम में भाभी आपका इंतजार कर रही है, जैन ने कहा। नहीं, अभी मेरे पास बहुत पेंडिंग काम है, मुझे जब जाना होगा तब मैं चला जाऊंगा, प्रांजल बोली। जीजू, आप आज के दिन भी ऐसा करोगे? निक ने हैरानी से पूछा। क्यों, आज ऐसा क्या है? भाई, माना कि आपने भाभी के साथ दूसरी बार शादी की है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है ना, शादी के बाद आपकी फर्स्ट वेडिंग नाइट, जैन बोलते बोलते रुक गया। निक ने कहा, तुम लोगों की तैयारियां मैंने पिछली बार देख ली थीं, अब मेरा मूड नहीं है वापस वही सब देखने का, प्लीज जीजू, प्रांजल ने जिद की। जैन और प्रांजल के ज्यादा जिद करने पर निक को हाँ कहनी ही पड़ी। वो उन दोनों के साथ अपने कमरे में गया। वहां जाकर उसने देखा कि कमरे के आगे जेनी और एवा खड़ी थीं। अब तुम लोग यहाँ कमरे के आगे क्या कर रही हो, निक ने पूछा। जेनी ने जवाब देते हुए हाथ आगे किया और कहा, कुछ नहीं, बस ये भी एक रस्म है, तुम्हें अंदर जाने से पहले हमें नेक देना होगा। हम यहाँ देखकर तुम्हें समझ आ गया होगा कि फ्री में हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे, तो लाओ पैसे। हाँ भाई, सबको अलग अलग, उनके हिसाब से जितने उन्हें चाहिए उतने दे दीजिए, जैन ने कहा। निक ने कहा, रियली जैन, शायद तभी तुम दोनों मुझे यहाँ पर खींच कर लेकर आए थे, मैं तो वैसे भी बिजी हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग मुझे अंदर जाने दो या न जाने दो। तुम्हें तो नहीं पड़ता, पर तुम्हारी गुड़िया को तो पड़ता है ना, बेचारी तैयार होकर कब से अंदर बैठी है, लंबा सा घूंघट डालकर, अब तुम अपनी गुड़िया को वेट करवाओगे, एवा ने मासूम शक्ल बनाकर कहा। निक ने कहा, हाँ तो उसे बोलो कि सो जाए। आप मेरी दीदी के साथ ऐसा करोगे जीजू, प्रांजल ने पूछा। तुम तो खुद गुस्सा थी उससे, अब क्या हो गया, प्रांजल बोली। आपने जूते छुपाने के पैसे दीदी को ही दे दिए, अब रूम डेकोरेट करने के तो पैसे हम दे दो। कितना ड्रामा करते हो सबके सब, निक ने मुंह बनाया और उन सबको पैसे दे दिए। उसके पैसे देते ही वे सब हंसते हुए वहां से चले गए। उनके जाने के बाद निक अंदर कमरे में गया।